के भजन करो। और सब दामोदर के हाथों में उनको दे दिया, आज के तुम स्वरूप के रघु हो गए। और उन्होंने उनको भजन को शिक्षा देकर के आगे बढ़ाया। तभी इसने जगत में एक आदर्श व्यक्ति हुए। इसलिए इन सब चीजों को लेते हुए अच्छी तरह से समझ करके भजन क्या चीज है समझने की जरूरत है। जो समझा नहीं कि भजन क्या चीज है, अब बहुत बाकी है। अभी हम ही लोग नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं भजन किसको कहते हैं। गुरु की सेवा मैंने क्या, भजन को सीखना। जब तक विषम में गुरु सेवा नहीं होगी, विषम रूप मैंने पड़ी स्मृति के साथ में, और गुरु भी अपने बेटे किससे भी अधिक अपने शिष्य को प्यार करेगा, तब तो वो दे सकेगा। इसलिए महाप्रभु जी की हम शिक्षा अनाशक्त रहो, किसी को समझने मत दो, और अपना पारिवारिक सब ठीक रखो। गृहस्थ धीरे 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 भक्ति यदि बढ़ती चली जाएगी, इसकी सारी व्यवस्था भगवान करेंगे, हमारे अनर्थ भी दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे सच्चे रूप में हम लोग भगवान का भजन कर सकते, उस समय देखा जाएगा कि हम त्यागी होकर के भजन करेंगे या संसार में रह करके करेंगे। गोपियों को संसार त्याग करने की जरूरत है कि नहीं है? हमारे पांचों पांडवों को द्रौपदी को सन्यासी बनने की जरूरत है कि नहीं? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। उसी तरह से आप सुखदेव और श्याम को लीजिए, उनको गृहस्थ होने की जरूरत है? उनकी कोई लालसा? गृहस्थ कौन बनता है? जिसको कुछ लालसा है, पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार है, भोगों की कुछ लालसा, उनको कोई लालसा ही नहीं है। उनको संसार के प्रति सबके प्रति स्नेह भी है, अनाशक्ति भी है। इस तरह से रह करके हमको भजन करना चाहिए। हे कृष्ण कीजिए।
कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै कृत्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। आज एकादशी तिथि है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे सृष्टि काल के प्रारंभ से ही, सत्ययुग इत्यादि से ही, पहले मनुष्य मात्र ही एकादशी करते थे। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हम हैं क्या? हम केवल मांस हार चाम हैं या इसके अंदर हैं? इस शरीर के अंदर में आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। जब तक जीवात्मा भगवान का स्मरण नहीं करेगा, उनके निकट नहीं पहुंचेगा, तब तक लाखों हजारों कोटि कल्पों तक ये संसार में भटकता रहेगा और तरह तरह के दुख और कष्ट को भोगेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा, अभी देखने गया, लाखों लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई अमेरिका से जा रहे हैं, कोई कहां कहां जा रहे हैं, किंतु उसको बचाना बड़ा भारी मुश्किल है। यहाँ पर मनुष्य थक जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग सब थक जाते हैं, इसके बाद में उनका बस नहीं चलता है। तो ये हार्ट चार्म मनुष्य का फैला है, इसके अंदर में आत्मा परमात्मा है, हैं दोनों एक ही साथ, किंतु जीवात्मा नहीं जानता कि परमात्मा हमारे साथ में है। जिस समय उसको ज्ञान लेगा उस समय में ये संसार से मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के भगवान की सेवा में लग जाएगा और आनंदमय सुखी हो जाएगा। जीवों को किसी प्रकार से आकर्षण का भगवान की तरफ में लगाना सबसे बड़ी दया है, क्योंकि जब तक उनमें मिलन नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने रिसर्च करके, देख करके, अनुभव करके एक ये तरीका निकाला है कि यदि एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो ये सहज रूप में हो सकता है, हम भगवान के निकट पहुंच करके सुखी हो सकते हैं। आज यदि रुपये के बल पर हम आनंद और सुख को खरीद लेते तो मुस्लिम कंट्रियों में कुवैत और कौन कौन अमीरात और क्या क्या है, इनों के खजाने की वजह से वहां पर डॉलर के खजाने भरे पड़े हैं, अमेरिका इत्यादि में भरे पड़े हैं, क्यों नहीं सुखी हो जाते। इसलिए इस अर्थ से नहीं होगा, एकादशी का साधारण अर्थ साधारण लोग नहीं समझ पाते। हमारे शरीर में एकादश इंद्रिय है, एकादश माने एक दस ग्यारह, ग्यारह इंद्रियां हैं, इनमें से कोई एक भी काम करना छोड़ देगी इंद्रिय तो शरीर काम नहीं करेगा, पंगू हो जाएगा। आंख जब बंद हो जाए तो देखिए तो ये क्या तमाशा होती है, सब रंग फीका हो जाएगा। नाक जब दोनों बंद हो जाए तो एक सेकंड जीवित रहना मुश्किल हो जाए। मुख से जीभवा के काट दीजिए एकदम भीतर से तो फिर क्या होगा। उसी तरह से ये इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, इनको हटा दिया जाए, ये पांच पांच दस रहे भी और मन को निकाल दीजिए तो आदमी पैर से चलता है या मन से चलता है, किस चीज से चलता है। मन न रहे और पैर रहे तो पैर चलेगा। इसलिए समस्त इंद्रियों का राजा ये मन है, एक तो बिना इंद्रिय का काम नहीं चलेगा और उस पर भी मन भी ना रहे तो और भी नहीं चलेगा। आज एकादशी के दिन हमारे ऋषियों ने एक तरीका निकाला भगवान के पास जाने के लिए, आज दस इंद्रियों के जितने भी क्रियाएं हैं आज भगवान के लिए करें, मन भगवान का चिंतन करें। कितने बड़े दयालु हैं, किस लिए सृष्टि करते हैं, कैसे हमको मनुष्य शरीर मिला, कैसे इसमें बुद्धि आई, कैसे हमें कार्य करने की क्षमता आई, मैया के गर्भ में हमारा पालन पोषण कौन किया। इस तरह से हम देखते हैं भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए मन के द्वारा यह सब चिंतन प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे हम, किस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, वो बंधन नहीं रहे, इसलिए अपनी चेष्टा से भगवान नहीं मिलेंगे, अपनी चेष्टा को देख करके भगवान द्रवित हो जाएंगे, उनकी कृपा बरस पड़ेगी और तब वो बंधन जाएगा। इसलिए अपनी चेष्टा भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए और साथ साथ में भगवान के कृपा के लिए रोना ही चाहिए।
इसलिए मन के द्वारा ये सब चिंतन हो। भगवान ने हाथ दिया, इसको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। भगवान के मंदिर के सामने झाड़ू देना, भगवान के लिए फूल की माला गूंथना, उसके लिए भगवान को अर्पित करना, हाथों से रसोई बनाना भगवान को अर्पण कर देना, हाथों से और जो काम हो सकते हैं भगवान के लिए, जो संसार के लिए करते हैं वो सब ठाकुर जी के लिए करें। पैर, पैर से क्या करेंगे? भगवान के धाम में जाएंगे जहां पर कृष्ण राधा जी की लीलाएं वृंदावन में हुई। कोई कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, कोई दूसरी जगह में जाते हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठ वह वृंदावन का धाम जहां पर कृष्ण की बड़ी मधुर बड़ी कृपा की लीलाएं हुई। वहां की एक रेणु का स्पर्श करने से भी हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए हाथों को इन सब कामों में लगाओ, पैर को भगवान के धामों में जाने में लगाओ, आंख को किस काम में लगाओ? भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान का दर्शन। सिर को किस काम में लगाओ? भगवान के चरण बंदन में उनको प्रणाम। एक बात ही जिसने भगवान के चरणों में बड़े प्रीति के साथ में अपना चरण झुका दिया, सिर झुका दिया, फिर जन्म उसके पास में नहीं जाए, मरने के बाद में फिर उसका फिर जन्म नहीं होगा, माता का फिर दूध पीने के लिए नहीं आना पड़ेगा। एक बार सत्संग प्रणाम कर दिया सिर को लगाकर मट्टी में, कमर को भी लगा दिया, पैरों को लगा दिया, हाथों को जोड़ करके सामने रख दिया और मन वचन कर्म से फिर उसको भगवान मैं तेरा हूं, मैं तेरे शरणागति, इस प्रकार से कर। इसी प्रकार से कानों को किस विषय में लगाए? भगवान की कथाओं को सुनने में लगाए। पहली अवस्था में यह सबसे श्रेष्ठ है। जब तक कानों को काम में नहीं लगाएंगे तब तक काम शुद्ध नहीं होगा, तब तक इन सारी चीजों को समझ नहीं सकते। कान में एक खूबी है, ये सारी इंद्रियां जिस काम जिसको चीज को लेती हैं पकड़ती हैं, कान उसको नहीं पकड़ता है, और कान जिस चीज को पकड़ता है ये इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। कैसे? कान शब्द को ग्रहण करता है, शब्द को, जैसे कृष्ण एक शब्द है, राम एक शब्द है, हाथ उसको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। सिर पकड़ सकता है? पैर पकड़ सकता है? कोई भी नहीं पकड़ सकता, उसको स्पर्श नहीं कर सकता। और ये लोग जिसको चीज को स्पर्श करते हैं कान उनको छोड़ देता है, इसलिए गुरु जी सबसे पहले कान को लेते हैं। जब वो भगवान की कथाओं को सुनो, शब्द ब्रह्म को सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह से सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके आज के दिन अंततः एक दिन, 15 दिन में एक दिन, एक महीने में दो दिन और एक वर्ष में 24, अंततः 365 दिनों में 24 दिन तुम भगवान को दो और सब कर लो, अपना जो कुछ हो हल्ला करना है सब काम करो, किंतु ये 24 दिन भगवान के लिए। खाने पीने में इसको मत लगाओ झंझट, और जिन्हें तो खाने के झंझट में लगा रहे सवेरे से शाम तक, सवेरे उठते ही चाय का प्याला और पेपर आ गया, और इसके बाद में चरखी चलने लगी। चरखी जानते हैं? चरखी ऐसे घूमना, सवेरे से जो कढ़ाई चढ़ी वो पतीला उतरता नहीं शाम तक, रात के 12 बजे तक। आज के दिन में उसको ठीक रखिए। यदि अधिक से अधिक भूख लगे और नहीं रहा जाए तो कुछ आलू उबाल लीजिए, गुड़ ले लीजिए, या कुछ ऐसी चीज, पानी पी लीजिए थोड़ा। और यदि ये भी ना ले सके तो और अच्छा, 8 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 वर्ष के लोगों के लिए, तो आजकल के दिन में थोड़ा सा लोगों के लिए असुविधा होती है, अच्छा तो कुछ फल मिल लेगा। इतने से भी यदि नहीं चलता है, चाहते एक बार एक कुछ सब्जी सेंधा नमक दे करके, थोड़ा सा घी इत्यादि दे करके ले, हल्का से हल्का, और बाकी समय भगवान के चिंतन में, स्मरण में और भगवत संबंधी विषय में, भगवत स्थानों में जाकर, वृंदावन नवदीप इत्यादि धामों में जाकर, नहीं तुलसी है ठाकुर जी का घर है, नहीं है तो वहीं पर ठाकुर जी को जैसे आया यहाँ परख दिया, और ये ठाकुर जी का मंदिर हो गया। उपवास माने क्या? उपवास, उपवास माने उप समीपे, वास माने निवास करना। गड़बड़ मत कीजिए, क्या जाने क्या लगा, कान में नहीं सुनेंगे तो ये लगाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, क्या उपवास। अपनी सारी इंद्रियों को और अपने मन को, आत्मा को आज भगवान के समीप में रखो, उप निकट में, वास माने रहना। आज सारी इंद्रियों को और मन को भी भगवान के निकट में बैठाओ। कैसे? विग्रह तो ही है, किंतु सबसे बड़ी बात है भगवान का चिंतन होता है। समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा में आज लगाए। इस तरह से करने से धीरे 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 एक वर्ष में 24 दिन हुआ, इसके बाद में जन्माष्टमी भी आ गई, रामनवमी आ गई, गौर पूर्णिमा आ गई, कुछ और नृसिंह चतुर्दशी आ गई, किसी के लिए शिव चतुर्दशी भी आ गई। धीरे धीरे ये जुड़ता जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे 24 दिन के बाद में भी, और कुछ जुड़ते जुड़ते धीरे 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 365 दिन भगवान की सेवा में हम लगा सकेंगे। और तब ये काम सब बंद हो जाएगा तो संसार का नहीं, बंद नहीं होगा, और खूबी के साथ में चलेगा, सफलता के साथ में चलेगा। इस तरह से अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए एकादशी का व्रत किया गया। जो लोग एकादशी नहीं पालन करते उनको भक्ति होना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए जो भक्ति करना चाहते हैं वो लोग एकादशी का व्रत का जरूर पालन करें। दूसरी बात, अभी हम लोग समुद्र के किनारे सब समय ही जाते हैं, रहते हैं, उसके यहाँ विदेशों में भी उसके शोर पर, सी शोर पर टहलते हैं, वहाँ एकादशी से अमावस्या, एकादशी से पूर्णिमा, पानी बहुत बढ़ करके ठीक होकर के ऊपर उठाता है, उसमें ज्वार आता है बहुत काफी, मतलब कभी कभी 12 फीट 13 फीट 14 फीट तक ऊंचा पानी बढ़ाता है, और उसके बाद में धीरे 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 तरंगे भी बहुत व्यस्त, जो लहरें हैं वो भी बड़ी बड़ी आने लगती है। क्यों? चंद्र का प्रभाव पानी पर पड़ता है, जहां जहां पानी है उसका प्रभाव पड़ेगा, पानी का भंडार है समुद्र, इसलिए पानी को आकर्षण करते हैं और पानी वो बढ़ता है, खींचता है अपनी तरफ। इसी तरह से हमारे शरीर में भी पानी, वो अन्न को आश्रय करके रहता है। एक पानी है ना, पत्थर के ऊपर में दीजिए, कितनी देर तक रहेगा? पानी दे दीजिए तो पानी खत्म हो गया, एक मिनट के अंदर में सूख जाएगा, पानी भीतर में नहीं जाएगा। पानी के ऊपर में 8-10 ब्लॉटिंग रखिए या कोई कपड़ा रखिए और ऊपर से पानी दे दीजिए, क्या होगा? पानी कब तक रहेगा? रुई रख दीजिए मोटी और उसको पानी गिरा दीजिए, वो पानी कब तक रहेगा? वो गीला रहेगा, वो सूखेगा नहीं। उसी तरह से जो आप पानी पीते हैं, यदि उपवास है तो वो पानी एकदम चला जाएगा, उसको चंद्र को खींचने की जरूरत नहीं है, और अन्न खाएंगे तो रुई वो बन जाता है, वो उस पानी को ग्रहण कर लेता है, चंद्र उसको आकर्षण करता है, उस समय में बीमारियां होती है, और यदि बीमारी रहेगी तो वो बढ़ जाएगा,
और बढ़ करके देखेंगे अधिकांश लोगों को, लोग मरते हैं एकादशी से लेकर के अमावस्या या एकादशी से पूर्णिमा में अधिक आदमी मरते हैं, और रोग जरूर बढ़ेगा, रोग उत्पन्न होंगे, ये ऐसा नियम है। इसलिए यदि एकादशी के दिन हम उसको चेक कर दें, अन्न नहीं खाएं, पानी नहीं पिए, तो चंद्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि मान लिया कि जैसे पानी के बिना नहीं रहा जाता, तो थोड़ा सा पानी पी भी लेंगे तो पत्थर पर जैसे पानी होने से चला जाता है, ठीक वैसे ही अन्न नहीं है इसलिए रूई का फाहा नहीं है, इसलिए उसको पानी देने से भी वो चला जाएगा, चंद्र का प्रभाव नहीं होगा, कम होगा किंतु होगा कुछ। और यदि ये सब कुछ भी न रहे, अन्न न रहे, अन्न माने चावल दाल गेहूं से बनी हुई कोई चीज और सब चीजें हैं, इन सब चीजों से आटा से मैदा से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, ये सभी चीजें उसका फल रख लिया, इसलिए इन चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए तो जरूर बीमारी है। बीमारी आने से चिंता होगी, चिंता होने से ही जीवन दुखी हो जाएगा, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ऋषियों ने इस चीज का आविष्कार किया, एकादशी का व्रत धर्म के नाम पर, किंतु है ये शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक है। तीसरी बात, यदि हम एक सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं तो 7वें दिन की छुट्टी रखते हैं, या 1.5 दिन की छुट्टी होती है शनिवार को आदमी, और आजकल न जाने कैसा होता है मैं नहीं जानता, पहले तो ऐसा ही था, शनिवार को हाफ और रविवार को कोड होती थी। इसलिए बच्चों को स्कूलों में 365 दिन क्यों नहीं पढ़ाते? करीब करीब हम समझते हैं कि 365 दिनों में से आधा या आधा 3/4 वर्ष केवल पढ़ाई होती है, बाकी 1/4 के करीब में छुट्टियां चली जाती, स्कूल कॉलेज सभी जगह कारखानों इत्यादि में। क्यों? इसलिए कि यदि 365 दिन उनको पढ़ाया जाए तो वो लड़के सब फेल हो जाएंगे, दिमाग नहीं ग्रहण कर सकेगा, इसलिए बीच में रिस्क देना उचित है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हैं पेट में, जो हजम करने की शक्तियां हैं, यदि 365 दिन घास और भूसा से भरते रहे तो इसकी अतड़ियां हैं, ये सब काम नहीं करेंगे। इससे हमारे ऋषियों ने भी शरीर को ठीक रखने के लिए आविष्कार किया, अंततः 15 दिन में 1 दिन उपवास करना आवश्यक है। तो और किसी दिन में क्यों नहीं किया गया, किसी दिन उपवास कर लेते? नहीं, उचित समय निकाला, जब चंद्र 15वीं अपने 11वीं कला में आए, जिसका प्रभाव वहां से आरंभ होता है, उसी दिन एकादशी माने 11वें दिन में अपनी 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करो। यह सब दार्शनिक विचार साथ अपने पारमार्थिक विचार साथ में शारीरिक विचार भी इसके साथ है। आजकल का मनुष्य इन चीजों को नहीं समझता, क्योंकि सब ग्रंथ जो हमारे शास्त्र है संस्कृत इत्यादि है, वो लोग इसको डेड लैंग्वेज कह करके उपेक्षा करते हैं और कहते हैं कि ये अंधानुकरण है, हम इन चीजों को नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते। तो छुआछूत रहता है, कॉलरा के रोगी के पास में क्यों नहीं जाते, इसको कॉलरा हो गया उसके घर के माता पिता नहीं जाते हैं, और बाकी लोग क्यों नहीं जाते? छुआछूत नाम का कोई चीज है नहीं, विचारों का छुआछूत सबसे अधिक है, इतना संक्रामक है जिसकी आप लोग कल्पना नहीं करते। एक साधु व्यक्ति भी एक दुर्जन व्यक्ति के पास मरे हैं तो उसकी विचारधारा एकदम बदल जाएगी और फिर वो दुर्जन हो जाएगा, और किसी अच्छे दुर्जन साधु के साथ में कोई दुर्जन भी रहे तो हर हस्ती भरणी उसका प्रसंगत पाए।
सब भी सुधर जाते हैं साधुओं के संग से। इसलिए ये सब चीजें एकादशी इत्यादि का व्रत किया गया था। और भी कुछ लाभ है, पारमार्थिक लाभ। पारमार्थिक लाभ ये है, ये तो अभी शारीरिक और मानसिक बतला है। पारमार्थिक लाभ ये है कि एकादशी का जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान है। बल्कि कहिए ये भगवान की भक्ति की मैया है एकादशी। एकादशी के दिन में यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दस चक्षात्म निवेदन इतनी प्रकार की भक्ति यदि हम करें, मन से स्मरण, जीवा से कीर्तन, कान से भगवान की कथा का श्रवण, और क्या रह गया, मस्तक से भगवान को प्रणाम और हाथ से भगवान की सेवा, पैर से भगवान के धाम में जाना, नाक से भगवान के चरणों में दी हुई फूल अर्घ चंदन इत्यादि का घ्राण, यदि ये सब किया जाए सहज रूप में चित्ताकृष्ट होकर के भगवान के पास में जाएगा और वो भगवान का। इसलिए भगवान ने ही एकादशी का रूप धारण करके ये जगत में जन्म दिया है। इसलिए हम लोग सब प्रकार से प्राचीन काल में देखा जाता है, इसके बहुत से उदाहरण है। हमारे श्रीमान शुभानंद जी दो चार उदाहरण पेश करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज बड़े विद्वान आदमी, उसमें पृथ्वी के राजा, बुद्धिमान, सब प्रकार से योग्य। इसके बाद में महाराज धर्मांगद और
रूपमांगद,
ये सब राजा हुए। एकादशी के लिए अपने प्राणों को नहीं छावर कर दिया। किस लिए? प्राण जाए तो जाए, आत्मा शुद्ध हमारी बने। प्राण तो जाएगा आदमी नकल, प्राण मने और आत्मा में अंतर है। प्राण वायु होती है, पांच प्रकार की वायु, ये प्राण हमारे बनते हैं। आत्मा उससे बहुत अलग और ऊपर है, दोनों एक नहीं है। इसलिए यदि पांच प्राण जाने से ये शरीर बदलता है, कोई हर्ज नहीं कि दूसरे जन्म में जाकर के हम भगवान का भजन करके हम ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए इस पर अधिक जो करके इसका महात्मा भी बदला, विशेष करके अम्बरीश महाराज के जीवन में जो ये बदलाएंगे, ये सब दार्शनिक विचार इसके भीतर में छिपे हुए हैं। एक महा कितना बड़ा भारी योगी, कह दे कि तू मर जा तो मर जाएगा। एक मरे हुए आदमी को कह दे तू जी जा, जाओ बस, उठ करके खड़ा हो गया, थोड़ा छू दिया, जहां कहां गया था। ऐसे बड़े बड़े दुर्वासा जैसे महात्मा योगी लोग, ब्रह्म योगी, ब्रह्म को जानने वाले। महाराज अम्बरीश राजा अपने पुत्र स्त्री के साथ में रह करके राज्य संचालन करते हुए भी कुछ भजन करते थे। उन्होंने एकादशी की और उसका महात्मा दुर्वासा नहीं समझे, या दुर्वासा जी एकादशी का महात्मा जगत को बतलाने के लिए ऐसा कर दिया। जरा इनसे सुनिए, इसके बाद में हम फिर थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे। बोल, अब इसको इस प्रकार से समझिए। पहली बात, सुदर्शन सुना ना चक्र भगवान का। सुदर्शन मैंने क्या भाई, अपने चित्त को दूसरे काम में मत लगाओ, बल्कि ये सब सुनने की चेष्टा करो, वो काम नहीं करेगा। विचार को ग्रहण करो कि ये भगवान ने यंत्र दिया है, ये यंत्र फेल हो जाएगा, कहें ये तो हमारे पास है, इसलिए इसमें ग्रहण करने की चेष्टा की। सुदर्शन, एक दर्शन, दर्शन मैंने क्या, दर्शन मैंने देखना। सुदर्शन, सु मैंने अच्छा दर्शन। संसार में सबसे अच्छा सुंदर दर्शन क्या है, राधा कृष्ण की के दर्शन से और कोई विश्व ब्रह्मांड में सुंदर दर्शन है, कुछ नहीं। इसको जो दर्शन कराते हैं उनका नाम है सुदर्शन। आ रहा है समझ में ना, सुदर्शन जो कराते हैं संसार में आसक्ति ये अंधकार है, जो संसार में आसक्त होकर के संसार का दर्शन करते हैं, ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, ये हमारे परिवार के हैं, शरीर को मान करके, आत्मा को तो देखते नहीं, इसको मान करके उसमें आसक्त होते हैं। जैसे मधु में मधुमक्खी आसक्त होकर के अपने प्राणों को गवा देती है। हमने सुना है जंगल में बड़े बड़े शिकारी लोग मंच पेड़ों पर चढ़ करके बहुत ऊंचे, यहाँ पर सिंह बाघ रहते हैं, मंच पर चढ़ जाते हैं, लोहे के गोले को गर्म कर देते हैं और वहां पर रखते हैं गर्म करके किसी तरह से, और बाघ उनको देख करके उनको मारने के लिए वहां पर आता है। ऊपर से वो रोटी का टुकड़ा या कुछ लाल लाल फल फेंकते हैं, इसके बाद में जब वो दो एक बार ऐसा लुकता है तो सब तब गोला फेंक देते हैं, आग का वो ऐसे मुख में लेते ही बस समाप्त हो गया जीवा की लालसा। ऐसे ही हमारा ये संसार है, ऐसे समझें तो ये अंधकार है। सुदर्शन, इस अंधकार को दूर कर भगवान का जो दर्शन कराते हैं इसका नाम है सुदर्शन। ये भगवान के हाथों में रहता है, अर्थात ये जो भक्ति रूपी जो सुदर्शन है ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही सुदर्शन हो सकता है। तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे तब मिलेगी। इस उपाख्यान में दो तीन चीजें बतलाई गई। पहली तो ये, एक साधारण गृहस्थ आदमी, वो भी साधारण नहीं, संसार में आसक्त होने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, राज्य धन वैभव पुत्र कलत्र सब कुछ उसके पास में है। राजा है ना, मंत्री तो होगा ही, प्रजाएं होंगी ही, सेनाएं होंगी ही, खजाना भी होगा, सब कुछ उसके पास में होगा, तो सब वैभव जिसके पास में है और वो चला रहा है बड़ी चतुराई के साथ में, कंट्रोल करता हुआ, और गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवान का भजन भी कर रहा है, मन को भगवान के चिंतन में, हाथों को भगवान की सेवा में, कानों को सबको लगा रहा है, किंतु इसको लोग साधारण लोग नहीं समझ सकते ये इतना ऊंचा है। राजा को कौन समझेगा, और वो भी इन सब विषयों को लेकर के। और दूसरी तरफ में संसार को त्याग करने वाले ब्राह्मण कुल, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मने वाले, वो भी शंकर के अंश से पैदा होने वाले दुर्वासा जी, बड़े योगी, लाखों वर्ष तपस्या करके ऐसा उन्होंने जो प्राप्त किया है, जिसको जो कह देंगे वही हो जाएगा, एक तरफ वो है और एक तरफ में साधारण राज्यों के साथ में ये महाराज अम्बरीश है, वो भी एकादशी कर रहे हैं, द्वादशी का पारण करेंगे, वो आए इनके घर पर, ऐसे बड़े सिद्ध महात्मा जो भी वो सिद्ध थे आए, ये उठ करके खड़े होकर के उनका चरणों में वंदना करके उनका चरण धोया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, क्या सेवा करें, मैं आज आपके यहाँ प्रसाद हूँ, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया इन्होंने। मैं देखिए ये गृहस्थ होकर के कैसा उनको सम्मान कर रहे हैं, दुर्वासा जी उनको आशीर्वाद देंगे या जैसा करेंगे, इधर देकर के चित्त सुनिए। तो दोनों में कौन बड़ा है, महाराज ये दुर्वासा जी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले इतने बड़े भारी योगी, सब संसार को छोड़ने वाले, जिसको जो कह देंगे वही, मर जाओ मर जाओ, तुम धन धान्य से पूर्ण हो जा, तुम राजा हो जाओ, तुम स्वर्ग में चले जाओ, ये सब देने का उनको शक्ति है, सामर्थ्य है। कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ मर रहा था, जाओ जी जाओ अभी, ऐसे समर्थमान। और अम्बरीश महाराज कुछ किसी से नहीं कहते, दीनहीन होकर के राजा होकर के विषयों में जैसे हैं, किंतु एकादशी करते हैं। अब उनको प्रणाम भी किया, वो स्नान करने के लिए गए। 24 मिनट का केवल समय था पारण का। महाराज जी विचार कर रहे हैं अम्बरीश, दो चीज है, एक समाज और दूसरा है भक्ति। समाज में भी, समाज का सबसे श्रेष्ठ एक व्यक्ति हमारे पास में आया है, उसका आदर करना। उसको मैंने कहा जी हम आपको हमारे यहां भोजन करें, और भोजन करने के लिए निमंत्रण देकर के उसके पहले ही आगे यदि खा लिया जाए तो उसका अपमान होगा। तो एक इतने बड़े भारी ब्रह्म योगी को अनादर करना, और एक तरफ में ये भक्ति का आदर करना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आ रहा है समझ में? एक है भक्ति, उस जिसको हम देखते नहीं, और एक तरफ में हमारे समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो कह देगा वो हो जाएगा, वो हमारे घर में आया, उसका आदर करें ना भक्ति का आदर करें? इसका आदर करेंगे। यदि हम उस व्यक्ति का निरादर करते हैं तो अभी हमें मार डालेगा, हम राज्य से च्युत हो जाएंगे, और हमें क्या करेगा, अभिशाप देगा, भ्रष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो प्राण प्यारा है न भक्ति प्यारी है? हम समाज के लोग इस चीज को विचार करने में अक्षम होते हैं, ये अंधकार है। और सुदर्शन जी क्या करेंगे? प्रकाश से ये बुद्धि देंगे, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक आदमी ने कहा देखो तुम्हारा प्यारा पुत्र है, आज एकादशी होने पर भी ये बीमार पड़ा है, मर जाएगा, इसकी तुम भक्ति छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज खा लो, तुम्हारे खा लेने से बच्चा जिएगा, और यदि तुमने उपवास किया तो ये मर जाएगा। लौकिक बात, वो भी सत्य नहीं। हमने कहा जी भाई भाई हमारा बच्चा जी जाए, भक्ति क्या करेगी आकर के? भक्ति से पैसा मिलेगा न, रुपया मिलेगा न, सम्मान मिलेगा न, हमारा बच्चा जी जाएगा। कहा जा अच्छा कि हम उपवास अपने बच्चे के लिए तोड़ देते, हम नहीं करें। ये समाज का डर अंधकार है। सुदर्शन जी इस अंधकार को दूर करते कहते हैं जैसे तुम्हारे ऐसे जैसे करोड़ों बच्चे तुम्हारे हो जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा, यदि एकादशी का व्रत नहीं तोड़ करके करेगा तो उसका फल यदि देगा तो तुम्हारे करोड़ों बच्चे, करोड़ों जन्मों के बच्चों का उद्धार हो जाएगा। किंतु ये समझना बड़ा भारी कठिन है। तो ये सुदर्शन भगवान की कृपा यदि हो जाए तब हम समझ सकते हैं। महाराज ने विचार किया ये महात्मा योगी सिद्ध आए हैं हमारे घर पर, इनको भोजन पहले दूं और उसके लिए अपना व्रत मैं तोड़ दूं, या इनका अनादर हो जाए? मैं तो नहीं कर रहा, किंतु ये समझेंगे कि हमारा अनादर कर रहा है, एकादशी व्रत की मैं रक्षा करूं, क्या करूं, क्या अच्छा है एकादशी व्रत करने से? हमारा भी कल्याण होगा, ये दुर्वासा का भी कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एकादशी का ही आदर करेंगे, हम समाज का और संसारिक दिशा और नियम है इसका हम विचार नहीं करेंगे। ये यदि तुलनात्मक रूप से यदि एक साथ नहीं आता तो इसको आदर कर लेते, यदि भक्ति का अनुकूल होता, किंतु यहां तो भक्ति का ये विपरीत है, इसलिए हम इसको नहीं जानते। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, और एकादशी के दिन यदि कोई फल मूल कंद लेकर के उपवास करता है तो दूसरे दिन वो भगवान का अर्पित जो जल है चरणामृत, उसको पीने से ही उसका व्रत खुल जाता है उसके पास। आज जो लोग एकादशी में कुछ खा लेते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए अन्न ग्रहण करना जरूरी है तब वो व्रत टूटेगा। आज जो निर्जला है उनके लिए ठाकुर जी को स्नान करा करके चरणामृत ले लेने से तुलसी के साथ में उसी से ही पानी मिलता है। उन्होंने निर्जला की थी इसलिए सोचा एकादशी के दिन हमने निर्जला किया है, इसलिए आज हम चरणामृत ले लेने से हमारा पारण हुआ भी और नहीं भी हुआ, पानी से व्रत नहीं छूटता है। अन्न लेने से होता, तो अन्न तो हमने लिया नहीं, पानी दे लिया, उनका व्रत भी टूट गया और उनका निरादर भी नहीं हुआ। किंतु उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको अभिसंपात कर दिया और बोले से जाओ इसको जला डालो। महाराज परीक्षित, ये अम्बरीश महाराज मृत्यु से नहीं डरते हैं, डरते हैं किस चीज से? वैष्णवों के चरणों में अपराध न हो, हमारी भक्ति न नष्ट, इसके लिए डरते हैं। किंतु मृत्यु से नहीं डरते किस लिए? आज इस जन्म में है इस शरीर को छोड़ें, दूसरे जन्म में हम चले जाएंगे, हमारा हार्ज क्या हुआ? कुछ भी अर्जन हुआ, इस कपड़े को बदल दिया, पुराने को नया पहन लिया, इसलिए मृत्यु से डर वैष्णवों को नहीं होता। इसलिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते जैसे हमारा जीवन बचा दो या उसका जीवन बचा दो। क्यों? अरे पुराना कपड़ा है, इसको हटाई देना अच्छा है, नए शरीर से हम अच्छी तरह से भगवान का भजन करेंगे। इसलिए उनको तनिक भी डर नहीं होता, बड़े आनंद के साथ में वो मृत्यु के सामने खड़े रहते हैं, इसलिए वो खड़े रहे। किंतु दुर्वासा जी इतने बड़े योगी होकर के ये ज्ञान नहीं है जो भक्ति में है, इसलिए डर के मारे मृत्यु जहां आई चक्र सुदर्शन आया, यदि वो चक्र सुदर्शन उनको मार डालता तो उनको दर्शन हो जाता है। किंतु इतने दुर्भागे जो वैष्णव के चरण में अपराध किया, इसलिए सुदर्शन जो उनको छू नहीं रहे। छूने से क्या होता? उसका कल्याण होता कि नहीं? हो जाता, उसको भगवान का दर्शन हो जाता, भले ही ये शरीर दूर हो जाता किंतु आत्मा से दर्शन हो जाता। वैष्णव के चरण में उनका अपराध होने से कहिए इसको हम नहीं छुएंगे, इसलिए डराते रहे। चाहते तो एक सेकंड में उनको खत्म, कितना भागेंगे? सुदर्शन चक्र की गति से इनकी गति अधिक नहीं है, मन की गति से भी इनकी गति अधिक है दुर्वासा की, किंतु सुदर्शन चक्र के सामने नहीं। तो क्यों नहीं जलाए? घूमते रहे, नहीं उनको जलाया नहीं। ब्रह्मा जी के पास ले गए, उन्होंने कहा जो तुम्हारे जैसे अपराधी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। शंकर जी के पास ले गए, तुम हमारा पुत्र होने पर भी, हमारा अंश होने पर भी तुमसे कोई संबंध नहीं, भगवान के भक्तों के चरण में तुमने अपराध किया, तुम उनकी महिमा तो नहीं जानता, एकादशी व्रत की महिमा तो नहीं जानता, तुम जाओ। फिर भगवान के पास में, भगवान ने फिर इनके पास में भेजी। किंतु ये महात्मा कितने सहिष्णु, ये सोचे कि हमारा ही अपराध हुआ, अपराध नहीं। और फिर जब उनको क्षमा कर दिया तो ये कहने लगे, ओ अनंत दासानं महत्वम अद्यम दृष्टमे। आज भगवान के भक्तों को महिमा देखी और एकादशी की महिमा भी हमने उपलब्धि की, कैसी इसकी महिमा है। इसलिए एकादशी को थोड़ा मत समझना। जो लोग एकादशी नहीं करते हैं और हरिनाम दीक्षा इत्यादि लिए हुए हैं तो हरिनाम काम नहीं करते, ये भी समझेंगे, वो भक्ति गड़बड़ हो जाएगी। इसे एकादशी के दिन में सारी भगवान के भक्ति के अंग पूर्ण अपने आप होते हैं यदि अच्छी तरह से पालन करें। इसलिए भक्ति की जननी कही गई है, इसलिए हम लोग एकादशी का अच्छी तरह से पालन करेंगे। हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, परमार्थिक सब प्रकार के इसमें कल्याण। हमारे शास्त्रों में जो कुछ विधि और निषेध बनाए गए हैं बस एक ही उसका उद्देश्य है। विधि और निषेध समझते हैं? चोरी मत करो, ये क्या है? निषेध। झूठ मत बोलो, निषेध है। सत्य बोलो, ये हुआ। ये व्रत करो, एकादशी करो, जन्माष्टमी करो, ये विधि है। गले में तुलसी की माला रहनी चाहिए, ये विधि है। असत संग जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनका संग मत करो, ये क्या हुआ? अच्छा, ये सब सारी विधियों का मतलब क्या है जो पालन किया जाए? जो कुछ हम पालन करते हैं समूल उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ में हमारा कैसे संपर्क होकर के हम उनके पास में पहुंचे जाए। तभी हमको पूर्ण रूप से शांति और सुख मिलेगा। इसके पहले लाख तुम चेष्टा करो। बारी मथे बल हो ये घृत सिकता से बरुतेल बेनु हरि भजन भवतरिया यश धाम। कौन कहते हैं? महात्मा तुलसीदास। भागवत क्या कहते हैं? हरे नाम अव केवलम कलौ नास्ति नास्ति और फिर नास्ति एव 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 नास्ति 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 एव नास्ति एव नास्ति नहीं होगा नहीं होगा और नहीं होगा बिना भगवान और भक्ति के कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हाथ उठा करके कह रहे हैं, मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं नहीं होगा। इसलिए जब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होगी